योगेश्वरे कृष्णे
ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनो पेते धर्मकं शरणं गतः। बोलिए
अमित्रु कलिं सत्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम् ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे
ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि
स्वाम काष्ठा मधुनो पेते
धर्मकं शरणं गतः।
त्वं नः संदर्शितो दात्रा
दुस्तरं निस्ततिर्षताम्
कलिं सत्वहरं पुंसां
कर्णधार इवार्णवम्
ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे
ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि
स्वां काष्ठा मधुनो पेते
धर्मकं शरणं गतः। माताओं में से कोई है?
त्वं न संदर्शितो दात्रा
दुस्तरं निस्थितिर्षताम्
कलिं सत्वहरं पुंसां
ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानानजनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिभ्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna. तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित यह भागवत सत्र जो प्रति बुधवार यहाँ पर हो रहा है, तो इस भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ पर ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम ज्ञान यज्ञ चल रहा है। क्या लिखते हैं? ज्ञान यज्ञ। वास्तव में यह एक यज्ञ है। श्रीमद् भागवतम जो सभी ग्रंथों का राजा है, समस्त ग्रंथों पर राज करने वाला जो ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवतम। एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु ने जब अपने नाभि कमल से कमल प्रकट किया और उसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, जैसे श्री भागवत के प्रथम श्लोक में हमने सुना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। भगवान ने ज्ञान प्रस्थापित किया ब्रह्मा जी को, और ज्ञान प्रस्थापित करके ब्रह्मा जी से सृष्टि सर्जन करने का सेवा दिया। ज्ञान देने के बाद भगवान विष्णु ने कहा कि आप सृष्टि का सर्जन करें। अब किसी भी चीज का सर्जन करने के लिए रजोगुण की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं, गीता का यह सिद्धांत है, किसी भी वस्तु का सर्जन करने के लिए रजोगुण की आवश्यकता होती है, किसी भी वस्तु को बनाए रखने के लिए सत्वगुण की आवश्यकता होती है, और किसी भी चीज को बिगाड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए और प्रलय करने के लिए तमोगुण की आवश्यकता होती है। सत्वगुण में रहने वाला व्यक्ति प्रलय नहीं कर सकता है, और तमोगुण में रहने वाला व्यक्ति सर्जन नहीं कर सकता है। तो अपने अपने गुणों की प्रधानता है। ब्रह्मा जी को रजोगुण के देवता माने जाते हैं क्योंकि वह सृष्टि का सर्जन करते हैं। भगवान श्री विष्णु को सत्व गुण के देवता कहे जाते हैं क्योंकि वह सृष्टि को का सर को मेंटेन करते हैं, बनाए रखते हैं, पालन करते हैं। और भगवान शिव को तमोगुण के देवता कहते हैं क्योंकि उसे सृष्टि का प्रलय करना होता है। ब्रह्मा जी भगवान के परम भक्त है, निरंतर भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की कथा और भगवान की लीला में मग्न रहते हैं। भगवान श्री विष्णु ने जब ब्रह्मा जी को यह कार्य सौंपा तो ब्रह्मा जी बहुत टेंशन में आ गए, बहुत दुविधा में पड़ गए। ब्रह्मा जी सोचे 2400 घंटा भजन करना चाहिए, भगवान ने मुझे क्या सौंप दिया हाथ में, जीवन मिला है भजन करने के लिए, लेकिन प्रभु ने बहुत बड़ी सेवा प्रदान की है, और यह सेवा भी ऐसी है जिस सेवा करने से भगवान में मन नहीं लगेगा, सर्जन करना है। अब आप कितना भी अच्छा बिजनेस करो, कोई व्यक्ति सोचे कि बिजनेस करते करते मैं भजन में मेरा पूरा पूरा मन लगाऊंगा, तो यह संभव नहीं है। मनन करने के लिए अपनी बुद्धि खाली होनी चाहिए, पहले से ऑलरेडी भरा हुआ कुछ होगा तब ये सब नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब भगवान ने यह भार सौंपा है तो अब क्या करें, कैसे स्मरण करेंगे भगवान का। तुरंत ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु को प्रश्न पूछा। श्री ब्रह्म उवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, यदा तू भगवान तस्मे श्रीमद भागवतम पुरा ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु को कि भगवंत आपने मुझे सृष्टि सर्जन कार्य में नियुक्त किया है और सृष्टि सर्जन कार्य में नियुक्त होते हुए मैं रजोगुण अगर मुझे दबा लेगा, ये रजोगुण बहुत ही भयावह है, अगर कोई व्यक्ति रजोगुण में आ जाता है चाहते हुए भी भजन नहीं कर सकता है, तो रजोगुण के कार्य में ही आपने मुझे डाला है तो मैं कैसे आपका भजन कर पाऊंगा। वास्तव में यह प्रश्न ब्रह्मा जी का तो है लेकिन हमारा भी यह बहुत बड़ा प्रश्न है। हम भी काम धंधे में और घर के काम इत्यादि अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं, तमस और रजस में लगे हुए हैं, जैसे तमोगुण और रजोगुण के बीच में रहते हुए भगवान का स्मरण कैसे करेंगे, किस प्रकार से हम भगवान का स्मरण करेंगे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को यह प्रश्न पूछा। जब ब्रह्मा जी ने यह प्रश्न पूछा तब भगवान श्री विष्णु कहते हैं, तब भगवान श्री विष्णु ने क्या किया, यदा तू भगवान तस्मे श्रीमद भागवतम पुरा, सबसे पहले भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बुलाकर यह श्रीमद भागवतम की कथा सुनाई। जन्माधस्य यतोनु आदि तरह से लेकर अंत में 18,000 श्लोक सुनाकर इस भागवत की कथा सुनाई। नाम संकीर्तन तस्मे, और यह भागवत सुनाने के बाद उपदिश्या ब्रवित ब्रह्मन सेव सेवत स्वधिष्ठ सिद्ध ये। ये भागवत कथा सुनाकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहा कि अब आपने भागवत सुन लिया है, अगर तुम अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहते हो, ये सृष्टि सर्जन करते करते भी मेरा भजन करना चाहते हो, मेरा मनन चिंतन करना चाहते हो, तो जो भागवत मैंने तुम्हें सुनाया है इस भागवत का प्रतिदिन पाठ करना, इसका पठन करना और इसका श्रवण करना। ये भागवत का श्रवण करने से रजोगुण और तमोगुण नहीं सताएगा, आप शुद्ध सत्व में स्थित हो जाओगे और मेरा स्मरण मेरी भक्ति बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते। तो वास्तव में यह भागवत भगवान की भक्ति स्थिर करने के लिए है। ऐसे कलयुग में तम और रजो प्रधान है, ऐसे युग में यह भागवत कथा श्रवण करके हम हमारी बुद्धि को समाहित कर सकते हैं और भगवान के चरणों में स्थित कर सकते हैं। तो भागवत की यह महिमा है और यह महिमावान ग्रंथ हम प्रति बुधवार को श्रवण करने का मौका हमें प्राप्त हुआ है प्रभुपाद जी की कृपा से। तो प्रभुपाद जी की यह अनुकंपा का या कृपा का हम सबको ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 21 श्लोक हम श्रवण कर चुके हैं। यथा बुद्धि यथा श्रुतम, जो हमने सुना है, जो पढ़ा है और जो बुद्धि में बिठा कर रखे हैं और जो प्रस्तुत कर सके हैं वो आप सुने हैं। लेकिन आप बड़े बुद्धिमान हो, कम शब्दों में आप जानने वाले में से हो, इसलिए आप यहाँ तक की सारी कथा समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। 22वें श्लोक में व्यास देव जी लिखते हैं, तम न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तितीर्षताम कलिम सत्व हरम पुंसाम कर्ण धार इवार्णवम। 88,000 ऋषि मुनि सुद गोस्वामी से जिज्ञासा कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। इस प्रश्न के दौरान पहले हम सुन चुके हैं कि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा कि कलयुग को आया जानकर हम सब लोग भाग दौड़कर इस नैमिषारण्य क्षेत्र में आ गए हैं और इस नैमिषारण्य क्षेत्र में केवल आपकी कथा सुनने के लिए हम उपस्थित हैं, हमारे पास बहुत समय है, कृपया करके आप हमें भागवत सुनाइए। और अब कहते हैं दुस्तरम अर्णवम, कहते हैं कि यह जो संसार है यह दुष्करम अर्णवम, अर्णवम का अर्थ होता है सागर, और दुस्तरम का अर्थ होता है जिसे जिसको तैर नहीं सकते, जिसको पार नहीं किया जा सकता है, अगाध जिसको कहा जाता है। यह संसार को एक सागर कहा गया है, और कैसा सागर, जिसे कोई पार न कर सके ऐसा। इसलिए अर्णवम तो कहते हैं लेकिन आगे दुस्तरम लगाते हैं, दुस्तरम अर्णवम, जिसे पार करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, इस संसार के सागर में, वैसे साधारण सागर में केवल पानी भरा होता है, इस संसार के सागर में क्या होता है, कहते हैं कलेर दोषो निधे राजन। ये संसार में दोष के अलावा, इस संसार रूपी सागर में दोष के अलावा कुछ नहीं, दोष ही दोष दिखते हैं इस संसार में। जगह जगह पर, गली गली में, मोहल्ले में, घर घर में दोष ही दोष दिखते हैं, पाप ही पाप हो रहे हैं। अब इस पाप का क्या वर्णन किया जाए, हम सब तो रोज देखते हैं हमारी आंखों से, कहां पर शराब की दुकान है, कहां पर नाचने वाले बियर बार हैं चल रहे हैं, कहां कहीं कहीं पर प्राणियों को मार काट कर लटकाया जाता है, लोग खाते हैं, हद हो गई। ये तो कुछ नहीं है, अब तो यह दोष की पराकाष्ठा पर यह कलयुग पहुंच चुका है। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, अब तक तो प्राणियों को मारकर खाते थे, अब तो मनुष्यों को मारकर खाने लगे। इस वस्तु को मैं देखा हूं अपनी आंखों से। ये ताइवान एक देश है, वहां की यह बात है, अब तो भारत में भी आ ही गया होगा। ताइवान में बालक का जब जन्म होता है, और जन्म हुआ बालक बहुत कोमल होता है, तो बालक को जन्म देने वाले जो उस बालक को रखना नहीं चाहते हैं, उस बालक को बेच देते हैं। किसे बेचते हैं, होटल वाले को, और होटल वाले उसे खरीद लेते हैं, और कितने डॉलर में खरीदते हैं वह भी लिखा है हमारे पास, कुछ 400-500 डॉलर में उसे खरीद लेते हैं। और वह होटल वाले उस बालक को खरीद कर उस रसोई घर में लेकर जाते हैं, और उस बालक, छोटे नन्हे मुन्ने कोमल बालक को फ्राई करते हैं, उसको तड़का मारते हैं, वे भी पूरा क्लियर आपको भी हम दिखाएंगे। और उसको तड़का मार के एक प्लेट में सजा कर मुंडी अलग कर दिया, दो हाथ अलग कर दिए, दो पांव अलग कर दिए, और एक प्लेट में सजा कर व्यक्ति को सर्विस किया जाता है। और यह भी हमने देखा है कि वो व्यक्ति उसे बिल्कुल चम्मच में, छोटा छोटा हाथ और पांव होता है, चम्मच में डालकर उसे खाता है। यह है कलयुग का दोष। शास्त्र में जो लिखा है बिल्कुल सही है, कलेर दोषे निधे राजन, दोषों का सागर। ये तो केवल एक देश में हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा समय जाने दीजिए, प्रत्येक देश में और प्रत्येक गली और मोहल्ले में यह होता होगा। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में कलयुग के दोषों का वर्णन किया गया है, भविष्य की बात की गई है कि एक दिन ऐसा आएगा, आज तो लोग प्राणियों को मारकर खाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा लोग अपने भाई को मारकर खा जाएगा, लोग अपने बच्चे को ही काट कर खा जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा और वह दिन दूर नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो कलयुग है यह दोषों का सागर है। हमारे श्लोक में देखिए लिखा है, दुस्तरम इवा अर्णवम। यह कलयुग जो है, यह संसार जो है, दोषों का सागर है। तो 88,000 ऋषि मुनि यह सोच रहे हैं कि इस कलयुग के दुस्तर सागर को हम पार कैसे करेंगे। यह संसार जो है एक सागर के समान है, दोषों का सागर है, और इसे पार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो है इसे पार करने के लिए सोचता है कि किस प्रकार इसे पार किया जाएगा, और जो मूर्ख है वो तो इसमें बहुत मस्त होकर तैरते रहते हैं, लेकिन कितने दिन वह तैरेंगे। मान लीजिए सागर में किसी को छोड़ दिया जाए तो कितने दिन तक वह तैर सकता है। अच्छे से अच्छा तैरना जानने वाला व्यक्ति भी 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ठीक उसी प्रकार इस संसार के संसार सागर में व्यक्ति कितना दिन तक तैर सकता है? 50, 100, 100 साल तक। आज तो 100 साल भी कोई नहीं तैरता है, 50, 60 साल में बिल्कुल थक जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं, भक्त होते हैं, इस पर विचार करते हैं। 88,000 ऋषि मुनि विचार कर रहे हैं कि इस संसार सागर को हम कैसे पार करेंगे। और 88,000 ऋषि मुनि यह भी जानते हैं इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए क्या चाहिए। जैसे एक सागर को पार करने के लिए अगर नाव मिल जाए तो पार कर सकते हैं, कर सकते हैं। हमारी शक्ति से हाथ और पांव हिलाकर पार नहीं किया जा सकता है, लेकिन नाव अगर मिल जाए, नौका मिल जाए, तो आराम से पार किया। तो 88,000 ऋषि मुनि जानते हैं कि संसार सागर को पार करने के लिए जैसे नौका है, वैसे इस संसार को, संसार रूपी सागर को पार करने के लिए श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम का अगर कोई श्रवण करता है और भगवान के नाम का अगर कोई जप करता है, तो यह श्रीमद् भागवतम और भगवान के नाम रूपी नौका लेकर व्यक्ति संसार सागर को पार कर सकता है। यह भागवत ग्रंथ और भगवान का नाम, यह दोनों नौका है इस संसार को पार करने की। तो अब क्या देर है संसार सागर को पार करने की? अब क्या प्रॉब्लम है? अगर पूछा जाए 88,000 ऋषि मुनियों को कि आप जानते हो कि यह संसार एक सागर है, और आप यह भी जानते हो इसे पार करने के लिए नौका श्रीमद् भागवतम और भगवान का नाम है, तो पार कर लो। तो 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं कि हम जानते हैं कि यह संसार रूपी सागर है दुखों का, इसे पार करने के लिए भागवत और हरि नाम है, लेकिन जब तक इस नाव को चलाने वाला कोई नहीं मिलता है, तब तक कैसे पार कर पाएंगे हम? शुद्ध गोस्वामी ने पूछा कि आप जानते हो संसार रूपी सागर है, आपके पास नाव भी है, भागवत भी आपके पास है। 88,000 ऋषि मुनि के पास ये भागवत ग्रंथ था, और वह यह भी जानते थे कि भगवान का नाम ही उत्तम है कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो शुद्ध गोस्वामी ने कहा कि आप तो जानते हो, उपाय जानते हो, आपके पास नाव है, सब कुछ है। 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं कि प्रभु, हमारे पास नाव है, हमारे पास उपाय है, लेकिन इस नाव को चलाने वाला हमारे पास नहीं। जैसे संसार, जैसे इस साधारण सागर को पार करने के लिए नौका चाहिए और नौका को चलाने के लिए नाविक चाहिए, जिसे कर्णधार कहा जाता है, बिना कर्णधार के वह नौका नहीं चलती है, ठीक उसी प्रकार बिना गुरु के यह भागवत और भगवान का नाम समझ में नहीं आता है। यद्यपि हमारे पास भागवत है, यह भागवत ग्रंथ सबके घर पर है, गीता भी है, लेकिन प्रभु जब तक इसे चलाने वाला हमें नहीं मिलता है, तब तक हम कैसे इसे समझ पाएंगे। तो यहां पर एक शब्द कहते हैं कर्णधार। हे प्रभु, हे सुत गोस्वामी, आप कर्णधार हो। कर्णधार कर जानते हैं आप? नाव जो होती है, हरे कृष्ण, इसे ठीक कर दीजिए। हरे कृष्ण ठीक हो गया, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। नाव जो होती है, नाव के बीच में दो चक्कू होते हैं, जिसे खेने के लिए, चलाने के लिए, तो उस चक्कू को चलाने वाले को कर्णधार कहा जाता है। वो जो दो चक्कू है नाव के, उसे नाव का कर्ण माना जाता है, और उस चक्कू को धारण करने वाले को कर्णधार कहते हैं। तो इस संसार, यह साधारण सागर की नाव को चलाने वाले को कर्णधार कहा जाता है, लेकिन इस संसार सागर को पार कराने वाले गुरु को भी कर्णधार कहा जाता है। कर्णधार का दूसरा अर्थ है जो भगवान की लीलाओं को कान में धारण करावे, उसे भी कर्णधार कहते हैं। तो प्रभु, हमारे पास उपाय है, नाव है, लेकिन इस नाव को चलाने वाला कोई नहीं है। भागवत और गीता होते हुए भी अगर गुरु नहीं है तो इस भागवत और गीता के ज्ञान को हम समझ नहीं सकते। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है। अगर गुरु की आवश्यकता नहीं होती तो इस संसार में स्कूल और कॉलेज खुलती ही नहीं। हम देखते हैं संसार में गली गली में स्कूल और कॉलेज नए नए खुल रहे हैं। उसमें क्या होता है? उसमें 6 या 7 विषय होते हैं, उस विषय की एक एक किताबें होती हैं, और उस किताब को लेकर विद्यार्थी स्कूल में जाता है और उनके टीचर उसे उस किताब को पढ़ाते हैं। अब मान लीजिए कहा जाए कि स्कूल में कोई नहीं जाएगा, घर पर बैठकर ही वह किताब पढ़ लेंगे तो क्या डिग्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। पढ़ना तो वही है साधारण जो हमारे पास है वही किताब, लेकिन वह किताब तब हमें समझ में आती है, तब डिग्री मिलती है जब किसी स्कूल और कॉलेज में जाकर किसी टीचर को, टीचर के अंडर में रहकर हम उसे सीखे। तो टीचर को, टीचर एक इंग्लिश शब्द है, उसे संस्कृत में गुरु कहा जाता है। तो आप देखिए एक साधारण पुस्तिका, एक भौतिक ज्ञान, एक टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए किसी को स्कूल और कॉलेज में जाना पड़ता है, तो यह भागवत और गीता जो भगवान की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है उसे पढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होए? अवश्य है। यद्यपि यह भागवत और गीता हमारे पास है लेकिन इसे समझने के लिए कर्णधार बहुत आवश्यक है। और अपने जीवन में कि कोई व्यक्ति कर्णधार धारण नहीं करता है, गुरु कोई नहीं बनाता है, तो उसका जन्म फैल है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में लिखा है, नृदेव माध्यम सुलभम सुदुर्लभम गुरु कर्णधारम। ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है और इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करके गुरु रूपी कर्णधार को हमें प्राप्त करना चाहिए। अगर मनुष्य जीवन प्राप्त करके गुरु किसी ने नहीं बनाया और भगवान की प्राप्ति नहीं की तो पुमान भवाब्दि न तरेच आत्महा, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष अपनी आत्मा का हनन करने वाला है, अपने अस्तित्व को नष्ट करने वाला है जो व्यक्ति गुरु बनाकर भागवत और गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं करता है। तो 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं कि प्रभु यद्यपि हमारे पास उपाय तो है, यद्यपि हम जानते हैं कि भगवान का नाम लेने से, भागवत पढ़ने से भवबंधन खुल जाएंगे, भवबंधन टूट जाएंगे, लेकिन ये भवबंधन खोलने की चाबी जो है वह आपके पास है। एक बार एक गुरुजी थे, संत, अपने प्रवचन में बस ज्यादा से ज्यादा ये एक वाक्य बहुत दोहराया करते थे, राम नाम जपो और समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओ। नाम राम जपो, राम नाम से समस्त बंधन कट जाएंगे। इस प्रकार से बहुत बहुत बोलते थे। तो जैसे गुरु बोलते हैं वैसे ही चेले बोलते हैं, तो गुरु के जो शिष्य थे वह भी अपने प्रवचन में बस यही बोला करते थे। तो एक बार वह गुरु का शिष्य घूमते घूमते एक गांव में गया, एक गांव में एक व्यक्ति के घर पर प्रवचन किया और उस शिष्य ने भी प्रवचन में यही कहा, राम नाम जपो सारे बंधन खुल जाएंगे, भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे, राम नाम जपो भव बंधन टूट जाएंगे। बहुत कहा, प्रवचन खत्म हुआ, प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर जब ये शिष्य घर पर आ रहा था तो जिसके घर में प्रसाद प्रोग्राम था वो तो सब काम में लगे थे, सर्विस करने में, सब करने में, तो ये अकेले बाहर निकले तो जिनके घर पे प्रवचन किया उसे घर पे एक तोता था, पिंजरे में बंद था। तो ये वक्ता बाहर निकले तो तोते ने उसे बुलाया, यहां पर आइए। तो ये गए वहां पर, जाकर कहा, आपने प्रवचन में बहुत सुंदर बात बताई। क्या कहा? राम नाम जपो भवबंधन टूट जाएंगे, भवबंधन खुल जाएंगे, लेकिन प्रभु मैं एक बार नहीं, मैं पूरा दिन राम नाम जपता हूं। ये पूरा दिन राम नाम जपने के बाद ये पिंजड़े का, ये लोहे का बंधन नहीं खुला तो भवबंधन कहां से खुलेगा? भवबंधन खुलने की तो बात दूर रही है, पिंजड़े का बंधन से भी मैं मुक्त नहीं हो सका, तो मैं कैसे आपकी बात को मानूं? तो प्रवचन करने वाले को तो पसीना आने लगा। और मन में सोचने लगे, सुनने वाले ने प्रश्न नहीं किया लेकिन ये तोता भारी पड़ गया। तोते को कहा, प्रभु आपके प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं मेरे गुरु जी को पूछ लूंगा। प्रभु जी काट कर कर दीजिए, ठीक। तो वक्ता ने कहा कि मैं मेरे गुरु जी को पूछकर कल आऊंगा, लेकिन किसी को यहां पर किसी को बताना मत, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये गया अपने गुरु जी के पास। गुरु जी के पास जाकर कहा कि इस प्रकार से गुरु जी आप जैसे कहते हो वैसे मैं प्रवचन में कह रहा था, लेकिन वो तोता ने कहा कि राम नाम जपो भवबंधन खुल जाएंगे, ऐसा मैं प्रवचन में बोल रहा था। तो कहा कि राम नाम जपने से भवबंधन खुलने की तो बात दूर रही, मेरा एक पिंजरे का बंधन से भी मैं मुक्त नहीं हो सका। तो गुरु जी ने कहा मैं जो कह रहा हूं वैसा जाकर तुम उसे कहना। तो गुरु जी ने सब बात बताई। ये वक्ता आया उस दूसरे दिन तोते के पास आकर कान में कहा। गुरु जी ने कहा था उसे कान में ही कहना। तो उसने कहा कि देखो, तुम यहां से मुक्त होना चाहते हो, ठीक है, तुम मरने का नाटक करो, खाना पीना बंद करो, सो जाओ और हिलना मत। तो तुमने कहा ठीक है, आप जैसे कहते हो, आप मेरे गुरु हो, आप जैसे कहो वैसे ही करूंगा मैं। तो वो तोता तो मरा हुआ जैसा हो गया। उसका मालिक जो था वो पिंजरा खोलकर बहुत खाना पीना दिया, लेकिन अब गुरु जी ने कहा था हिलना भी मत, तोता हिला भी नहीं। तो ऐसे एक दिन नहीं हिला, दो दिन नहीं हिला, दूसरे दिन शाम को मालिक ने सोचा लगता है बेचारा मर गया। मरे हुए को क्या घर पर रखना। तो उसने तोते का पिंजरा खोला, तोते को बाहर निकाला और घर के आंगन में जाकर उसे छोड़ दिया। जैसे ही उस तोते को छोड़कर ये घर पर वापस लौटा, तोता तुरंत फर्र करके उड़ गया। उपदेश यह है, हालांकि वह तोता जानता था कि राम नाम लेकर सब भव बंधन टूट सकते हैं, लेकिन राम नाम लेकर भव बंधन टूट सकते हैं, लेकिन चाबी गुरु के पास है। जब तक गुरु उसे स्पेशल उपदेश नहीं देता है, तब वह राम नाम भी उसका कुछ काम नहीं करता है। यद्यपि तोता राम नाम जानता था, लेकिन जब तक गुरु के शरण में वह नहीं होता है, तब तक मुक्त नहीं हो सकता। 88,000 ऋषि मुनि यही कह रहे हैं। यद्यपि हम जानते हैं भागवत सुनकर ही हमारा उद्धार है, हम यह भी जानते हैं भगवान का नाम लेकर उद्धार होने वाला है, लेकिन जानने से क्या हो गया, धाम में भेजने की चाबी तो प्रभु आपके पास है। इसलिए कृपया करके हम आपके मुख से ये भागवत सुनना चाहते हैं, कृपया करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कहते हैं, त्वम न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्त तर्षिताम कलिम सत्व हरम पुंसाम कर्ण धार इवार्णवम। वास्तव में इस कलर रूपी संसार को पार करने के लिए आप हमारे कर्ण धार हो। और यहां पर कलयुग को कैसा कहा गया है, कली सत्व हरम। कलयुग जो है इस संसार में किसी व्यक्ति का सत्व गुण भी हर लेता है, सत्व गुण को हरने वाला है यह कलयुग। इस संसार में अगर कोई व्यक्ति सत्व गुण में रहकर कुछ अच्छे काम करने की भी सोचे, लेकिन कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि उसे अच्छा काम करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सत्व हरम है, सत्व गुण को हरने वाला है। मान लीजिए कोई मन में इच्छा करता भी है कि मुझे, मैं भजन करना चाहता हूं, मंदिर जाना चाहता हूं, लेकिन कलयुग का प्रभाव इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है कि बेचारे व्यक्ति को भजन नहीं करने देता है। मान लीजिए कोई पति सोचे कि मैं भक्ति करूं, लेकिन दैववश कर्मवश ऐसी पत्नी मिल जाती है, बेचारे को भजन नहीं करने देती है। हालांकि सार है भजन करना, मनुष्य जीवन मिला है भजन करने के लिए, लेकिन क्या करे, कर्म में जो लिखा है वह तो भुगतना पड़ता है। और कलयुग का यह प्रभाव है, चाहते हुए भी व्यक्ति सत्व गुण में नहीं रह सकता है। यह संसार की हालत है, यह कलयुग का एक प्रभाव है। तो ऐसे कलयुग, ऐसा कलयुग के सागर को पार करने के लिए आप हमारे कर्णधार हो, और आप हमारे कर्णधार हो इस प्रकार से हम नहीं कह रहे हैं, साक्षात धात्रा ब्रह्मा जी ने हमारा कर्णधार हमारे गुरु के रूप में आपने आपको भेजा है। धात्रा का अर्थ ब्रह्मा जी भी होता है, भगवान भी होता है। भगवान कृष्ण ने ही आपको हमारे गुरु रूप में भेजा है। और धात्रा का और एक अर्थ भाग्य भी होता है कि आप बड़े भाग्य से हमें प्राप्त हुए हो, इसलिए कृपया करके आप हमें भागवत सुनाओ। वास्तव में सूत गोज स्वामी जैसे वक्ता मिलना, भागवत के दिव्य संदेश को सुनाने वाला बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, तो ये बहुत बड़ा भाग्य है। 88,000 ऋषि मुनि अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। वास्तव में हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि आप जैसे वक्ता हमें मिले। आगे 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं, अब तक कितना प्रश्न हुआ याद है? 5 प्रश्न। अब इस पहले अध्याय, पहले स्कंद के पहले अध्याय में अंतिम प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या है अंतिम प्रश्न? कहते हैं, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणीय धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। कहते ब्राह्मणीय, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, वेदों की रक्षा करने वाले, धर्म वर्मणि धर्म के कवच रूप योगेश्वर, योगियों के जो बाप है, ऐसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा धाम को छोड़कर चले गए, तब धर्म किसकी शरण में गया? यह है 88,000 ऋषि मुनि का अंतिम और छठा प्रश्न। क्या कहा? भगवान को 3 संबोधन देते हुए कहते हैं, भगवान को कौन है? तो कहते हैं ब्राह्मणीय, भगवान ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, और ब्राह्मणीय का दूसरा अर्थ होता है वेद, वेदों की रक्षा करने वाले। वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान को घोड़ा बनना पड़ता है तो बन जाते हैं, मछली बनना पड़ता है तो बन जाते हैं। भगवान ने मत्स्य और हरिग्रीव अवतार धारण यह वेदों की रक्षा करने के लिए लिया था, इसलिए भगवान को ब्राह्मणीय कहा जाता है। तो कहते ब्राह्मणीय धर्म वर्मणि, धर्म के जो कवच है, धर्म के कवच का अर्थ होता है कि जब तक भगवान है तब तक धर्म का नाश नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान जो है वह साक्षात धर्म के कवच है। तो ब्राह्मणीय धर्म वर्मणि योगेश्वरे, तीसरा संबोधन कृष्ण को योगेश्वर दे रहे हैं, योगों के ईश्वर। जितने भी योग हैं, सभी योगों के जो ईश्वर है उसे योगेश्वर कहते हैं। और दूसरा, जितने भी योगी हैं, बड़े बड़े योगी और आजकल के सांस लेकर छोड़ने वाले तथा कथित योगी, ये सभी योगियों के ईश्वर, सभी योगियों के बाप भगवान श्री कृष्ण है। तीसरा अर्थ यह होता है कि जितने भी प्रकार के योग हैं, ये सभी प्रकार के योग से जिसको प्राप्त किया जा सकता है उसे योगेश्वर कहा जाता है। तो ऐसे योगेश्वर ब्राह्मणीय धर्म वर्मणि योगेश्वरे कृष्णे, ऐसे योगेश्वर कृष्ण स्वाम काष्ठाम उपेते अधुना, ऐसे भगवान कृष्ण जब अपने धाम में चले गए, इस पृथ्वी को छोड़कर आज से 5,000 वर्ष पहले जब अपने धाम में चले गए, तब धर्म कम शरणम गत, तब भगवान जब तक थे तब तब धर्म था, लेकिन भगवान जब चले गए तो वह धर्म किसकी शरण में गया, कहां चला गया? ये सत्य बात है, भगवान की प्रतिज्ञा भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। और भगवान जब तक इस धराधाम पर रहते हैं तब तक धर्म का पालन बहुत अच्छी तरह से होता है, सब लोग भगवान की लीला का, भगवान का गुणानुवाद करते रहते हैं। यहां तक असुर गण भी भगवान की लीला का मनन करते हैं। सुर लोग, देवतागण और भक्त लोग तो भगवान का भजन करते ही हैं, लेकिन असुर लोग भी डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली भगवान का स्मरण करते हैं। जैसे कंस को ही ले लीजिए, आकाशवाणी हुई थी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। जब 8वां पुत्र जब गर्भ में आया तो भागवत में वर्णन है कंस एक भी काम ठीक से नहीं कर सकता था, उसे 10 दिशा में विष्णु और कृष्ण ही दिखता था। विष्णु ही दिखते थे। खाने चलते थे तो रोटी में विष्णु दिखते थे, सोने चलते थे तो बाजू में विष्णु दिखते थे, चलते फिरते आजू बाजू सब जगह पर विष्णु ही दिखते हैं। ऐसी स्थिति तो हम भक्ति करने वालों की भी नहीं है। हमें पूछा जाए कि यहाँ पर विष्णु है तो हमें संदेह होगा, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, देखा किसने। लेकिन ये असुर होते हुए भी, भगवान का दुश्मन होते हुए भी भगवान का स्मरण और भगवान को देख रहा है। तात्पर्य यह है, भगवान जब तक इस धराधाम पर थे तब तक सब लोग धर्म का आचरण, धर्म का पालन करते थे। क्यों? क्योंकि सब लोग भगवान की गुण रूप और लीला को आसानी से सुनते थे। भगवान गोकुल और वृंदावन में रहकर जो भी लीला करते थे, मान लीजिए 8 बजे अगर भगवान ने किसी असुर का वध किया है तो 8:05 और 8:10 तक तो पूरी पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड में यह न्यूज फैल जाता था कि कृष्ण ने आज इस प्रकार से इसका वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जो लीला करते थे उसको फैलाने में देर नहीं लगती थी। इस संसार में भी मान लीजिए कुछ होता है तो तुरंत आज तक जी टीवी, ये टीवी, वो टीवी में सब कुछ तुरंत आ जाता है। तुरंत कोई युद्ध हुआ या कुछ भी हुआ तुरंत आ जाता है। लेकिन ये संसार के जो संवाद आता है, संसार की जो खबर है, केवल पृथ्वी तक सीमित है। लेकिन भगवान की जो लीला है यह पूरे ब्रह्मांड में इसका प्रचार तुरंत 5-10 में हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो संवाद आता है, इसको सुनाने प्रचार करने वाले बहुत बड़े बड़े लोग हैं। नारद मुनि सबसे बड़े संवाददाता है, ब्रह्मा जी इसका प्रचार करते हैं। ब्रह्मा जी और नारद मुनि जब प्रचार करने चले कौन बाकी रह जाएगा। तो इस प्रकार से नारद मुनि, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े देवतागण भगवान की लीला को गाया करते थे। भगवान की लीला को सुनकर और भगवान की लीला को प्रत्यक्ष देखकर धर्म का आचरण सब लोग करते थे। लेकिन भगवान जब चले गए तो अब धर्म का आचरण लोग कैसे करें? क्योंकि भगवान जब थे तब तो धर्म था, क्योंकि भगवान साक्षात धर्म है, भगवान की वाणी जो है वह धर्म है। लेकिन भगवान ही जब चले गए तो धर्म कहां गया, कहां गया? तो दूसरे शब्दों में कहते हैं धर्म क शरणम गत, धर्म किसके शरण में गया? तो यह छठा प्रश्न हुआ। ये 6 प्रश्न के साथ इति श्रीमद् भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे प्रथम अध्याय समाप्त। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। लेकिन इस अध्याय में और कुछ याद रहे या न रहे, लेकिन यह तो याद रहना चाहिए कि 88,000 ऋषि मुनि ने सुध गोस्वामी को कितने प्रश्न पूछे और कौन से पूछे। कितने प्रश्न पूछे? 6 प्रश्न पूछे। कौन से पूछे, याद है सब प्रश्न? और जो और भी जिज्ञासु है उसे यह भी जान लेना चाहिए कि सुध गोस्वामी को 88,000 ऋषि मुनि ने 6 प्रश्न पूछे। ये प्रश्न कौन से हैं और किस किस श्लोक में है, याद है सबको? आपको इसलिए ही यह किताब दिया जाता है ताकि आपको पता चले। तो आइए फिर से मैं कह देता हूं, अब याद रख लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न इस अध्याय के 9वें श्लोक में पूछा गया। कौन सा है 9वां श्लोक? तत्र तत्र अंजसायुष्मन भवता यद विनिश्चितम पुंसा मेकांत श्रेय पुंसा एकांत श्रेय तन न संशितु मरहसी। पहला प्रश्न पूछा 88,000 ऋषि मुनियों ने कि संसार में मनुष्यों का सबसे परम कल्याणकारी मार्ग अथवा कर्तव्य कौन सा है? मनुष्य का सबसे बड़ा कल्याणकारी परम कर्तव्य परम मार्ग कौन सा है, यह है पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न 11वें श्लोक में पूछते हैं, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागश अत साधोत्र यत्सारम समद घृत्य मनीषिया ब्रूहि भद्राय भूतानाम येनात्मा सुप्रसिद्ध्यति। यह दूसरा प्रश्न पूछे कि सर्व शास्त्रों के सारभूत ऐसी कौन सी वस्तु है, हे सुध गोस्वामी आपने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो सभी शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद उसका निचोड़ क्या निकलता है, तो उसका निचोड़ हमें बताइए कि इस आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, आत्मा को सुखी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपने सभी शास्त्र पढ़े हैं, तो यह सभी शास्त्रों से हमें यह बताइए कि आत्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना, ऐसा कौन सा कार्य है जो कार्य करने से आत्मा प्रसन्न हो जाती, यह है दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न 12वें श्लोक में पूछा गया, सूत जानासि भद्रमते भगवान सात्वतांपति देवक्याम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकित्सया। भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक धाम में विराजते हैं, गोलोक धाम वासी साक्षात बजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण को देवकी और वसुदेव के यहाँ पर जन्म लेने की क्या जरूरत पड़ी, साक्षात भगवान को आने की क्यों जरूरत हुई, यह है इस अध्याय का तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न 17वें श्लोक में है, तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभि ब्रूहि न श्रद्ध दाना नाम लीलया ददत कला। हे सुत गोस्वामी, कृपया करके आप भगवान श्री कृष्ण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर क्या क्या लीला किए, कृपया करके हमें यह सुनाइए। तो ये हुआ चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न 18वें श्लोक में है, अथ ख्या ही हरेर्धिमन अवतार कथा श्रुभा लीला विदधत स्वेरम ईश्वर स्यात्म मायया। हे सुत गोस्वामी, भगवान श्री कृष्ण ने जितने जितने अवतार लिए हैं, उन सब अवतारों में भगवान ने जो जो लीला की है, वह सब लीला का हमें श्रवण कराइए। यह है पांचवा प्रश्न। और छठा प्रश्न आज जो हमने सुना इस अध्याय के अंतिम श्लोक में 23वें श्लोक में है, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कम शरणम ग्रत। भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में चले जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया, तो ये 6 प्रश्न 88,000 ऋषि मुनि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में पूछे हैं। तो यहाँ पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब इस प्रश्न के उत्तर अगले बुधवार से प्रारंभ हो गए। आप सब सोचते होंगे प्रश्न प्रश्न होते जा रहे हैं, उत्तर कब मिलेगा। अब एक के बाद एक धड़ाधड़ इसके उत्तर मिलेंगे, और कुछ कुछ उत्तर में तो कई अध्याय निकल जाएंगे, कुछ कुछ उत्तरों में कई स्कंद निकल जाएंगे, और बीच बीच में भी प्रश्न पूछेंगे 88,000 ऋषि मुनि। बहुत सुंदर कथा प्रारंभ होगी। अब सबसे पहले अगले बुधवार को सूद गोस्वामी मंगलाचरण करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रवचन प्रारंभ होता है और प्रवचन करने वाले मंगलाचरण करते हैं, अब प्रश्न पूछ लिया है और सूद गोस्वामी कथा करने के लिए तैयार हो गए हैं आसन ऊपर, अब दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक से सूद गोस्वामी अपना मंगलाचरण करेंगे और भागवत कथा प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो इस प्रकार से भगवान की कथा सुनना और भगवान का नाम लेना, यही जीवन का परम लाभ है, परम लक्ष्य है, और इसी से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं और इस संसार में हम सुखी होकर शांति के साथ रह सकते हैं। अतः सब भक्तों को भगवान के नाम का जप करना चाहिए और भागवत कथा सुननी चाहिए। हरे कृष्णा।